एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी समस्या की गहराई में उतरेंगे जो दुनिया भर के समाजों को ना दीमक की तरह चाट रही है। मेरा मतलब है भ्रष्टाचार।
जी नमस्कार। और इस अहम मुद्दे पर हमारी बातचीत का आधार होंगी रॉबर्ट आय रॉटबर्ग की बहुत ही प्रभावशाली किताबें एंटी करप्शन।
हाँ,
और ये किताबें सिर्फ प्रॉब्लम बताती नहीं हैं, बल्कि समझाती भी हैं कि भाई भ्रष्टाचार क्यों पनकता है और इससे निपटने के रास्ते क्या हो सकते हैं, ठोस रास्ते।
और ये आज जानना इसलिए भी इतना जरूरी है क्योंकि देखिए, भ्रष्टाचार सिर्फ ये नहीं कि कुछ लोग बेईमान हैं।
सही बात है।
ये तो हमारे देश के विकास की रफ्तार पर ब्रेक लगाता है,
बिल्कुल
लोकतंत्र को कमजोर करता है,
बिल्कुल
समाज में जो भरोसा होता है ना एक दूसरे पर,
ये।
उसे खत्म कर देता है। लेकिन रॉटबर्ग एक उम्मीद भी दिखाते हैं ना। उनका मानना है कि अगर सही रणनीति हो और सबसे जरूरी सच्ची राजनीतिक इच्छा शक्ति हो,
हाँ, पॉलिटिकल विल जिसे कहते हैं।
हाँ, तो इस गहरी बीमारी का इलाज मुमकिन है।
बिल्कुल।
तो आज कोशिश यही रहेगी कि रॉटबर्ग के नजरिए को समझें और उनके समाधानों से कुछ सीखें।
बिल्कुल। चर्चा शुरू करने से पहले लेखक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रॉबर्ट आय रॉटबर्ग,
हाँ बताइए।
वो शासन, राष्ट्रों की विफलता मतलब स्टेट फेलियर, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में एक जाना माना नाम है, काफी सम्मानित हैं।
अच्छा, हाँ, मैंने पढ़ा है कि उन्होंने हार्वर्ड केनेडी स्कूल में एक प्रोग्राम शुरू किया था संघर्षों पर, और वर्ल्ड पीस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट एमेरिटस भी रहे।
जी
तो उनका जो अनुभव है, खासकर अफ्रीकी राजनीति और कमजोर देशों पर, उसने उन्हें भ्रष्टाचार को एक बहुत ही अलग नजरिए से देखने की क्षमता दी है। वो इसे सिर्फ एक अकेली घटना की तरह नहीं देखते।
और यही यही उनकी खासियत है। रॉटबर्ग भ्रष्टाचार को सिर्फ एक कानूनी या कह लें नैतिक पतन के तौर पर नहीं देखते।
अच्छा,
तो फिर कैसे देखते हैं? वो इसे राष्ट्रों की जो अंदरूनी कमजोरी होती है ना, और उनके नाकाम होने का एक बुनियादी कारण मानते हैं।
ओहो,
वो राजनीति विज्ञान, आर्थिक विकास और सुरक्षा अध्ययन, इन तीनों फील्ड्स की अपनी समझ को मिलाकर इस मुद्दे को देखते हैं।
तो मतलब एक तरह के पॉलिटिकल डायग्नोस्टिशियन कह सकते हो उन्हें।
हाँ, बिल्कुल सही शब्द है। जैसे डॉक्टर लक्षणों को देखकर बीमारी की जड़ पकड़ता है ना,
हाँ,
वैसे ही रॉटबर्ग रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद, इन लक्षणों के पीछे की असली बीमारी यानी कमजोर शासन, जवाबदेही की कमी, लीडरशिप की विफलता, इसका पता लगाते हैं।
और फिर
और फिर दुनिया भर के उदाहरणों से सीखकर वो बताते हैं कि देखो भाई, ये तरीका काम करता है और ये वाला नहीं। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है।
तो अब आते हैं किताब के मूल सार पर। ये किताबें करती क्या हैं असल में?
देखिए, रॉटबर्ग की ये किताबें भ्रष्टाचार का जो उलझा हुआ जाल है ना, उसे परत दर परत खोलने की कोशिश करती हैं।
अच्छा,
और इनका एक बड़ा मकसद ये भी है कि आम आदमी से लेकर पॉलिसी बनाने वालों और बिजनेस लीडर्स तक सबको साफ साफ समझाया जाए कि भैया भ्रष्टाचार है क्या चीज, क्यों पनपता है, और सबसे जरूरी, इससे सिस्टमैटिक तरीके से कैसे लड़ा जाए।
और किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या है? वो काफी दिलचस्प लगता है।
हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। रॉटबर्ग का तर्क है कि भ्रष्टाचार किसी कल्चर की देन नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी समाज के डीएनए में है,
या सिर्फ कुछ बुरे लोग हैं।
हाँ नहीं, सिर्फ कुछ बुरे लोगों का काम, बल्कि एक व्यवस्था की मतलब सिस्टमिक राजनीतिक और आर्थिक समस्या है।
सिस्टम की प्रॉब्लम।
बिल्कुल। और यही उनका वो नजरिया सामने आता है। समाधान सिर्फ खराब सेबों को टोकरी से निकालने में नहीं है, बल्कि उस सड़ी हुई टोकरी यानी पूरी व्यवस्था को, पूरे सिस्टम को ठीक करने में है।
ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका
है ना? और इस लड़ाई में वो कहते हैं सबसे ताकतवर हथियार क्या है?
क्या है?
वो इस पर बार बार जोर देते हैं, देश के टॉप लीडरशिप की अडिग, साफ दिखने वाली और भरोसेमंद राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल।
पॉलिटिकल विल।
इसके बिना वो कहते हैं सारे कानून, सारी एजेंसियां सब बेकार हैं, सिर्फ दिखावा।
तो ये किताबें सिर्फ प्रॉब्लम बताकर नहीं छोड़ती, बल्कि समाधान का रास्ता भी दिखाती हैं।
जी हाँ, ये बताती हैं कि सही लीडरशिप हो, एक पूरी स्ट्रैटेजी हो और सब्र हो, तो उन समाजों में भी बदलाव आ सकता है जहां भ्रष्टाचार ने गहरी जड़ें जमा ली हैं। ये सिर्फ जानकारी नहीं, एक तरह का रोड मैप देती हैं।
चलिए, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। रॉटबर्ग कैसे एनालाइज करते हैं इसे?
देखिए, सबसे पहले तो वो परिभाषा बिल्कुल साफ रखते हैं, निजी फायदे के लिए सरकारी पद का गलत इस्तेमाल, सिंपल।
ठीक है।
लेकिन वो यही नहीं रुकते, वो कहते हैं कि इसे ठीक से समझने और लड़ने के लिए इसके अलग अलग रूपों को पहचानना जरूरी है।
अच्छा, जैसे?
जैसे उन्होंने बांटा है, एक है ग्रैंड करप्शन, ये होता है सरकार के टॉप लेवल पर, इसमें भारी रकम या बड़े नीतिगत फैसले शामिल होते हैं,
जैसे क्लेप्टोक्रेसी, जहां नेता ही देश लूटने लगते हैं।
बिल्कुल, वो इसका एक भयानक रूप है। फिर है पेटी करप्शन, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में जिससे आम आदमी जूझता है, छोटी मोटी रिश्वतखोरी,
दफ्तर में काम कराने के लिए या ट्रैफिक पुलिस।
हाँ वही, ये रकम भले छोटी लगे पर इसका सबसे ज्यादा बोझ गरीबों पर, आम आदमी पर पड़ता है।
और भी हैं क्या?
जी हाँ, पॉलिटिकल करप्शन भी है, जहाँ नेता अपनी कुर्सी या ताकत बचाने के लिए नियमों कानूनों को ही तोड़ मोड़ देते हैं। और एक और गंभीर रूप है स्टेट कैप्चर। इसमें क्या होता है कि कुछ बड़े ताकतवर निजी समूह, चाहे वो देश के हों या बाहर के, गैर कानूनी तरीकों से सरकार के फैसलों को अपने फायदे में मोड़ लेते हैं।
बापरे।
तो रॉडबर्ग कहते हैं कि इन सबको अलग अलग समझना जरूरी है, क्योंकि हर एक से लड़ने का तरीका थोड़ा अलग होगा।
सही बात है। तो फिर इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है समाज को? रॉडबर्ग कहते हैं ये कोई विक्टिमलेस क्राइम नहीं है।
बिल्कुल नहीं, इसके आर्थिक नुकसान तो बहुत बहुत बड़े हैं। सोचिए, ये विदेशी निवेश को रोकता है। कौन ऐसी जगह पैसा लगाएगा जहां हर कदम पर घूस देनी पड़े?
सही है।
ये लोकल बिजनेस को दबाता है, और सबसे दुखद, ये जरूरी चीजों से जैसे हेल्थ, एजुकेशन, साफ पानी, इनसे पैसा हटाकर उन बड़े प्रोजेक्ट्स में लगाता है जहां नेताओं अफसरों को किकबैक मिले।
और राजनीतिक नुकसान?
वो भी कम नहीं, ये लोकतंत्र को खोखला करता है। न्यायपालिका, पुलिस, इन पर से लोगों का भरोसा उठता है।
चुनाव भी प्रभावित होते होंगे।
बिल्कुल, चुनावी प्रक्रिया को बिगाड़ता है, और आखिरकार ये राजनीतिक अस्थिरता या देश की नाकामी, मतलब स्टेट फेलियर, तक ले जा सकता है।
और सामाजिक तौर पर?
सामाजिक कीमत, सबसे ज्यादा बोझ गरीबों पर, समाज में ऊंच नीच बढ़ती है, लोगों में एक गहरी निराशा, एक मायूसी फैलती है।
ये सब सुन के लगता है कि आखिर ये इतना फैलता क्यों है? क्या कारण बताते हैं रॉडबर्ग?
कुछ मुख्य कारण हैं। पहला और सबसे बड़ा, कमजोर संस्थाएं,
वीक इंस्टीट्यूशंस।
मतलब
जब कानून का राज सख्त ना हो, अदालतें आजाद और असरदार ना हो, और निगरानी रखने वाली संस्थाएं कमजोर हो, तो पकड़े जाने का डर कम हो जाता है।
हाँ ये तो है।
और
दूसरा, पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी, खासकर सरकारी खरीद फरोख्त में, बजट बनाने में, और जहां से सरकार को कमाई होती है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, जब चीजें छुपी रहती हैं तो गड़बड़ी करना आसान होता है।
और तीसरा?
तीसरा है गलत प्रोत्साहन, पावर्स इंसेंटिव्स। जैसे अगर सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बहुत कम है तो वो शायद रिश्वत लेने को मजबूर हों, या फिर ऐसी राजनीतिक संस्कृति जहां वफादारी और नेटवर्क काबिलियत से ज्यादा मायने रखते हों।
और इन सब के ऊपर, जैसा आपने पहले भी कहा था, वो है?
हाँ वो है, राजनीतिक इच्छा शक्ति का पूरी तरह से न होना। रॉटबर्ग इसे सबसे ज्यादा अहम मानते हैं।
बिल्कुल, जहां लीडरशिप ही मिली हुई हो, या आंखें मूंद ले, या लड़ने की हिम्मत ही ना हो, वहां तो ये फैलेगा ही।
वही माहौल बनाता है असल में।
तो फिर रास्ता क्या है? समाधान कहां से शुरू हो?
रॉटबर्ग कहते हैं, पहला और सबसे जरूरी कदम है मजबूत, साफ दिखने वाली और भरोसेमंद राजनीतिक इच्छा शक्ति। नेताओं को सिर्फ बोलना नहीं, करके दिखाना होगा कि वो भ्रष्टाचार को जरा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।
एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स।
बिल्कुल। इसके बाद आती है एक व्यापक राष्ट्रीय रणनीति, जिसके मोटे तौर पे तीन पिलर होने चाहिए।
तीन पिलर कौन कौन से?
पहला, रोकथाम, प्रिवेंशन, यानी सिस्टम में ऐसे बदलाव लाओ कि भ्रष्टाचार के मौके ही कम हो जाएं। दूसरा, प्रवर्तन, एनफोर्समेंट, मतलब जो भ्रष्ट हैं उनकी निष्पक्ष जांच हो और उन्हें सख्त सजा मिले, ताकि बाकियों को सबक मिले।
और तीसरा?
तीसरा, जन शिक्षा, पब्लिक एजुकेशन, समाज की सोच बदलना, लोगों को जागरूक करना और उन्हें इस लड़ाई में शामिल करना।
ये तो हुई रणनीति, पर इसे जमीन पर उतारने के लिए क्या चाहिए?
उसके लिए कुछ ठोस संस्थागत ढांचे चाहिए। रॉटबर्ग कुछ मुख्य स्तंभों पर जोर देते हैं।
जैसे
पहला, स्वतंत्र पहरेदार संस्थाएं, इंडिपेंडेंट वॉचडॉग्स, एक ताकतवर और आजाद एंटी करप्शन एजेंसी ACA, जैसे हांगकांग का ICAC है।
हाँ, सुना है उसके बारे में।
एक मजबूत और स्वतंत्र न्यायपालिका, और एक ताकतवर ऑडिटर जनरल का ऑफिस जो सरकारी खर्च पर नजर रखे।
ठीक है, ये हुआ पहला समूह। और
दूसरा समूह है जरूरी कानूनी हथियार, एसेंशियल लीगल टूल्स, जैसे सभी बड़े अफसरों के लिए अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना जरूरी हो,
विसल ब्लोअर्स की सुरक्षा।
हाँ, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, सूचना का अधिकार यानी RTI जैसा कानून, और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के सख्त नियम,
ताकि कालाधन छुपाना मुश्किल हो।
बिल्कुल। और तीसरा जरूरी हिस्सा है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग,
इंटरनेशनल कोऑपरेशन।
वो क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार की जड़ें अक्सर देश के बाहर तक फैली होती हैं। यहाँ यूनाइटेड नेशंस का एंटी करप्शन कन्वेंशन UNCAC बहुत अहम है। ये एक ग्लोबल समझौता है।
अच्छा।
और साथ ही अमेरिका का FCPA या UK का ब्राइबरी एक्ट जैसे कानून भी हैं जो अपनी कंपनियों को विदेशों में रिश्वत देने से रोकते हैं। ये ग्लोबल नॉर्म सेट करते हैं।
और इस सब में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है?
टेक्नोलॉजी का रोल बहुत बड़ा है। ई गवर्नेंस सोचिए, अगर टैक्स ऑनलाइन भरें, लाइसेंस ऑनलाइन मिलें, तो छोटे मोटे लेन देन में घूसखोरी के मौके कितने कम हो जाते हैं।
हाँ, ये तो है। एस्टोनिया का उदाहरण देते हैं वो शायद।
जी हाँ, एस्टोनिया ने इसमें काफी कामयाबी पाई है। फिर है ओपन डेटा, मतलब सरकारी बजट, खर्चे, ठेकों की जानकारी ऑनलाइन डालना। इससे पत्रकार, नागरिक सब पैसे का पीछा कर सकते हैं,
पारदर्शिता बढ़ती है।
और सिविक टेक जैसे मोबाइल ऐप या सोशल मीडिया, इनसे नागरिक शिकायत कर सकते हैं, नजर रख सकते हैं।
सही है।
और रॉडबर्ग नागरिक समाज की भूमिका पर भी जोर देते हैं, है ना?
हाँ बिल्कुल। सिविल सोसाइटी, स्वतंत्र मीडिया और आम नागरिकों की सक्रियता, जमीनी स्तर पर सरकार को जवाबदेह बनाने में इनका रोल बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये लगातार दबाव बनाए रख सकते हैं।
तो क्या कुछ सफलता की कहानियां भी हैं? ये सब निराशाजनक ही है।
नहीं, सफलता की कहानियां भी हैं जो उम्मीद जगाती हैं। सिंगापुर का जिक्र तो आता ही है।
हाँ, वो तो क्लासिक उदाहरण है।
वहाँ ली क्वान यू की जबरदस्त पॉलिटिकल विल, एक बेहद ताकतवर एंटी करप्शन एजेंसी और सख्त नियमों वाली नौकरशाही ने देश को बदल दिया।
और जॉर्जिया, वहाँ भी कुछ हुआ था?
हाँ, जॉर्जिया का उदाहरण बड़ा नाटकीय है। 2003 की क्रांति के बाद राष्ट्रपति सक्काश्विली ने शॉक थेरेपी अपनाई, पूरी ट्रैफिक पुलिस को एक झटके में हटा दिया।
सच में? हाँ, और बिजनेस करने के नियम बहुत आसान बना दिए, बहुत तेजी से फर्क पड़ा। और अफ्रीका में बोत्सवाना एक मिसाल है।
अच्छा।
उन्होंने शुरू से ही अच्छे शासन, कानून के राज और अपने प्राकृतिक संसाधनों के सही मैनेजमेंट पर ध्यान दिया।
लेकिन ऐसे देश भी तो हैं जहां कोशिशें नाकाम रही।
बिल्कुल, नाइजीरिया जैसे देशों के उदाहरण दिखाते हैं कि अगर असली पॉलिटिकल विल ना हो तो एंटी करप्शन के नाम पर कितनी भी एजेंसियां बना लो, कितने भी कानून पास कर दो, जमीन पर कुछ नहीं बदलता। नीयत साफ होनी चाहिए।
ये उदाहरण वाकई रॉकबर्ग की बातों को सही साबित करते हैं।
जी,
तो इस सारे बातचीत से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं, उन्हें एक बार समेट लेते हैं। पहली और सबसे अहम बात क्या है?
राजनीतिक इच्छा शक्ति ही सब कुछ है, धुरी है। इसके बिना कुछ नहीं होगा, और ये सिर्फ कहने से नहीं, करने से दिखनी चाहिए।
दूसरी बात,
बल्कि एक व्यवस्था की बीमारी सड़ी हुई टोकरी समझो। समाधान सिस्टम को बदलने में है, सिर्फ लोगों को नहीं।
तीसरा,
कोई एक जादू की छड़ी नहीं है, एक व्यापक मल्टी डायमेंशनल रणनीति चाहिए। रोकथाम, सजा, शिक्षा, संस्थागत सुधार, टेक्नोलॉजी, नागरिक भागीदारी, सब जरूरी हैं।
अक्सर हम एक ही चीज पे फोकस करते रह जाते हैं।
वही। चौथा, भ्रष्टाचार, गरीबी और देश की नाकामी का गहरा रिश्ता है। ये सिर्फ नैतिकता नहीं, विकास और सुरक्षा का मुद्दा है।
पांचवी,
पारदर्शिता बहुत ताकतवर हथियार है। सूरज की रोशनी सबसे अच्छी कीटाणुनाशक है। जितना खुलापन, उतना कम भ्रष्टाचार।
भारत में RTI ने ये दिखाया भी है।
बिल्कुल। और आखिरी, छठी बात, सावधानी भरा आशावाद और धैर्य।
मतलब
ये लड़ाई मुश्किल है, लंबी है, सब्र चाहिए। जैसे शिक्षा या स्वास्थ्य को सुधारने में वक्त लगता है, लेकिन ये जीती जा सकती है। उदाहरण है हमारे सामने।
हाँ, सिंगापुर, बोत्सवाना, जॉर्जिया।
जी, तो निराश होने की जरूरत नहीं, बस लगे रहना होगा।
रॉडबर्ग की किताबों में कुछ ऐसी लाइनें हैं जो दिमाग में रह जाती हैं, कुछ यादगार विचार।
हाँ बिल्कुल हैं। पहला, भ्रष्टाचार कोई पीड़ित रहित अपराध नहीं है। ये आर्थिक और सामाजिक विकास में सबसे बड़ी बाधा है, जो गरीबों पर एक प्रतिगामी कर, रिग्रेसिव टैक्स की तरह काम करता है और लोकतांत्रिक वैधता के लिए जहर है।
मतलब इसकी सबसे ज्यादा मार गरीबों पर पड़ती है और ये लोकतंत्र पर भरोसे को खत्म करता है।
बिल्कुल। दूसरा, भ्रष्टाचार विरोधी सुधार तब तक असफल होने के लिए अभिशप्त हैं जब तक कि उन्हें देश के शीर्ष नेतृत्व की स्पष्ट, विश्वसनीय और अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित न किया जाए। राजनीतिक इच्छा शक्ति सुधार के इंजन के लिए अनिवार्य ईंधन है।
वही बात, लीडरशिप सबसे अहम है।
जी। तीसरा, सबसे प्रभावी रणनीति कुछ खराब सेबों की तलाश करना नहीं, बल्कि सड़ी हुई टोकरी को ठीक करना है। लक्ष्य प्रोत्साहन और संस्थानों की व्यवस्था को इस तरह से बदलना है कि ईमानदारी अपवाद नहीं बल्कि नियम बन जाए।
सिस्टम बदलो, सोच बदलेगी।
हाँ।
चौथा, सूरज की रोशनी सबसे अच्छी कीटाणुनाशक बनी हुई है। डिजिटल युग में पारदर्शिता, ओपन डेटा, स्वतंत्र प्रेस और एक जागरूक नागरिकता द्वारा संचालित सत्ता को जवाबदेह ठहराने के लिए हमारा सबसे शक्तिशाली और लोकतंत्रीकरण करने वाला उपकरण है।
आज के जमाने में सूचना और नागरिक भागीदारी की ताकत।
और पांचवा विचार, सफल भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों के लिए उसी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और धैर्य की आवश्यकता होती है जो समाज, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में निवेश करते हैं।
ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं।
बिल्कुल, इसके लिए पीढ़ीगत बदलाव की सोच चाहिए।
तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? आम आदमी क्या कर सकता है?
नागरिकों के तौर पर हम सिर्फ भ्रष्टाचार हाय हाय करने से आगे बढ़ सकते हैं। हम ठोस सुधारों की मांग कर सकते हैं।
जैसे?
जैसे एक वाकई आज़ाद एंटी करप्शन एजेंसी, नेताओं अफसरों की संपत्ति सार्वजनिक हो, सरकारी ठेकों में पारदर्शिता हो, आरटीआई का इस्तेमाल करें, सवाल पूछें, छोटी मोटी रिश्वत देने लेने से मना करें।
हाँ, ये बहुत जरूरी है। और जो ग्रुप्स पारदर्शिता के लिए काम कर रहे हैं उनका साथ दें, अपने गुस्से को सही दिशा दें।
और पॉलिसी बनाने वालों के लिए,
नीति निर्माताओं और सरकारी अफसरों के लिए ये किताब एक एक्शन प्लान जैसी है। रणनीति बनाएं, संस्थागत कमजोरियों को पहचानें, रोकथाम पर ज्यादा जोर दें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें।
और सबसे जरूरी
ईमानदारी से खुद से पूछें, क्या वाकई में पॉलिटिकल विल है?
और बिजनेस लीडर्स,
व्यापार जगत के नेताओं के लिए भी संदेश है, ईमानदारी लंबे समय में बिजनेस के लिए भी अच्छी है। भ्रष्टाचार रिस्क बढ़ाता है, इमेज खराब करता है, जीरो टॉलरेंस अपनाएं।
और व्यक्तिगत स्तर पर?
व्यक्तिगत स्तर पर शायद सबसे बड़ा बदलाव ये है कि हम निराशा और ये सोच के कुछ नहीं बदलेगा से बाहर आएं।
हाँ, ये बहुत आम है।
ये समझे कि भ्रष्टाचार एक सिस्टम की लड़ाई है और इसमें हर किसी का रोल है, चाहे छोटा हो या बड़ा। चुप रहना भी समस्या को बढ़ावा देना है।
सही कहा। मेरे लिए इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी सीख यही है कि विश्वसनीय नेतृत्व प्रतिबद्धता कितनी ज्यादा जरूरी है। सिर्फ बातें नहीं, एक्शन।
मुश्किल फैसले लेना, ताकतवर लोगों से भिड़ना, मिसाल कायम करना।
बिल्कुल।
और मुझे जो बात सबसे ज्यादा असरदार लगी वह है भ्रष्टाचार को सिर्फ एक नैतिक बुराई न मानकर एक हल की जा सकने वाली शासन प्रणाली की समस्या के रूप में देखना।
हाँ, इससे लड़ने का नजरिया बदल जाता है,
ज्यादा रणनीतिक हो जाता है और कम निराशाजनक। और ये समझना कि ये लंबी लड़ाई है, इसमें सब्र चाहिए, यह हमें जल्दी हार मानने से रोकता है।
तो रॉबर्ट रॉडबर्ग का यह विश्लेषण दिखाता है कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं।
लेकिन यह ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई हल ही ना हो। सही रणनीति, अटूट पॉलिटिकल विल, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल और सबसे बढ़कर हम सबकी यानी नागरिकों की जागरूक और सक्रिय भागीदारी,
इनसे इस लड़ाई को न सिर्फ लड़ा जा सकता है
बल्कि जीता भी जा सकता है।
उम्मीद है।
बिल्कुल उम्मीद है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।